नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और गृहमंत्री अमित शाह ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर की भव्य प्रतिमा का बिडनाबाद में अनावरण किया। कैबिनेट ने 2027 डिजिटल जनगणना को मंजूरी दी। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना की शुरू करने की घोषणा की और उद्योग विभाग द्वारा ननकौड़ी द्वीप समूह में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की भव्य प्रतिमा का राजधानी श्री विजयपुरम के निकट स्थित बिडनाबाद में अनावरण किया गया। इसी अवसर पर वीर सावरकर प्रेरणा पार्क का भी आधिकारिक उद्घाटन किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कालापानी की सजा के तहत अंडमान स्थित सेलुलर जेल में कठोर यातनाएं दी गई थी। वीर सावरकर ने जेल की कठिन परिस्थितियों के बीच भी राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। उनके लेखन और क्रांतिकारी विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। नवनिर्मित वीर सावरकर प्रेरणा पार्क को इस ऐतिहासिक विरासत और सावरकर के राष्ट्रीय योगदान के सम्मान में विकसित किया गया है। पार्क में स्थापित प्रतिमा को सावरकर की अदम्य राष्ट्र निष्ठा और सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आयोजकों के अनुसार इस पार्क का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ना और उन्हें राष्ट्र हित के प्रति समर्पण की प्रेरणा देना है। इस कार्यक्रम में द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह जनगणना दो चरणों में होगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय और प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। 2027 की जनगणना डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल एप्स के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा। इसके तहत 30 लाख कार्यकर्ता जनगणना में शामिल होंगे और जाति गणना भी की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने विशिष्ट दिव्यांग जनों PWD के लिए परीक्षाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है। आयोग अब यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक दिव्यांग जन उम्मीदवार को आवेदन पत्र में उल्लेखित उनकी पसंद का केंद्र मिल सके। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सबसे पहले विशिष्ट दिव्यांग जनों PWD और गैर विशिष्ट दिव्यांग उम्मीदवारों दोनों के लिए प्रत्येक केंद्र की मौजूदा क्षमता का उपयोग करेगा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि यह फैसला पिछले 5 वर्ष में परीक्षा केंद्रों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री पाटिल लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और सांसद जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। विभिन्न भूमिकाओं में उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री पाटिल एक अनुभवी राजनेता थे। वे हमेशा समाज के हित में योगदान के लिए तत्पर रहते थे। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और जागरूकता कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। योजना के तहत नियोक्ता उन कर्मचारियों का नामांकन कर सकेंगे जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच कार्य पर शामिल हुए हो, लेकिन अब तक ईपीएफ में पंजीकृत न किए गए हो। इस योजना में पिछली अवधि के लिए कर्मचारी अंशदान पूरी तरह माफ होगा, जबकि नियोक्ता को केवल अपना अंशदान जमा करना होगा। योजना में पंजीकृत प्रतिष्ठान निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ भी ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करेगी और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाएगी। विस्तृत जानकारी मंत्रालय और ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल है में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग के अनुसार पर्यवेक्षक अपना काम शुरू कर चुके हैं और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सप्ताह में 2 दिन संबंधित राज्यों में उपलब्ध रहेंगे। एसआरओ राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। वे संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी प्रत्यक्ष या वर्चुअल बैठकें करेंगे ताकि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी हो सके। इन पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। उद्योग विभाग की ओर से ननकौड़ी द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सरकारी प्रायोजित योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इच्छुक उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। यह कार्यक्रम जनजातीय परिषदों, बैंकों और संबंधित विभागों के सहयोग से कछाल, ननकौड़ी और कमोटा द्वीप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लगभग 150 युवाओं ने भाग लिया। युवाओं को पीएमईजीपी योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। शिक्षा निदेशालय की विज्ञान शाखा द्वारा प्रयोगशाला सहायकों और परिचारकों के लिए 5 दिवसीय व्यवहारिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। यह कार्यक्रम राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय आरबीवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रतिभागियों के लिए प्रयोगशाला प्रयोगों को संचालित करने की क्षमता और प्रयोगशाला उपकरणों के सुरक्षित संचालन पर ध्यान केंद्रित करना था। कार्यक्रम में द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों के कुल 97 प्रयोगशाला सहायकों और परिचारकों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी के सहयोग से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु में बायो एजेंट्स के व्यापक उत्पादन पर 3 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया। बायो एजेंट्स का उपयोग रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कीट प्रबंधन में क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना था। इस अवसर पर द्वीप समूह की प्रमुख फसल नारियल के पेड़ों से संबंधित कीट प्रजातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर की भव्य प्रतिमा का बिटनाबाद में अनावरण किया। कैबिनेट ने 2027 डिजिटल जनगणना को मंजूरी दी। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना की शुरू करने की घोषणा की और उद्योग विभाग द्वारा ननकौड़ी द्वीप समूह में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।